एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं, उसके फाटकों में आनंद की करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए। उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। आते हैं उसके भवन में, महिमा और आदर है मन में। आते हैं उसके भवन में, खुशियां है खुशियां है मन में।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम आज उसका वचन सुनने से पहले फिर से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास फिर से आते हैं, हमें आशीषित कर, हमारे मनों को खोल दे पिता, तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चल सके। हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर, मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो पिता, उन्हें विशेष आत्मिक आशीष दे और उन्हें उनके परिवारों को आशीष दे, उन्हें तुझ में बढ़ने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा से चला कि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज हम सीखेंगे बीज बोने से अन्य सबक भाग दो। प्रकृति में ईश्वर के नियमों में प्रभाव निश्चित रूप से कारण का अनुसरण करता है। कटाई इस बात की गवाही देती है कि बोया क्या गया है। आलसी कार्यकर्ता अपने काम से दोषी ठहराया जाता है। फसल उसके खिलाफ गवाही देती है। आध्यात्मिक चीजों में भी प्रत्येक कार्यकर्ता की ईमानदारी उसके काम के परिणामों से मापी जाती है। उसके काम का चरित्र चाहे मेहनती हो या आलसी, फसल से पता चलता है। इस प्रकार अनंत काल के लिए उसका भाग्य तय हो जाता है। प्रकृति में भी ईश्वर के नियमों का पालन होता है। बोया गया हर बीज अपनी तरह की फसल पैदा करता है। मानव जीवन में भी ऐसा ही है। हम सभी को करुणा, सहानुभूति और प्रेम के बीज बोने की जरूरत है, क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। स्वार्थ, आत्म प्रेम, आत्मसम्मान, आत्मभोग का हर गुण एक जैसी फसल लाएगा। जो अपने लिए जीता है वह शरीर के लिए बोता है और शरीर से वह भ्रष्टता की फसल काटेगा। ईश्वर किसी भी इंसान को नष्ट नहीं करता। जो भी नष्ट हो जाता है वह खुद को नष्ट कर लेता है। जो कोई भी विवेक की चेतावनियों को दबाता है वह अविश्वास के बीज बो रहा है और ये निश्चित रूप से फसल पैदा करेंगे। ईश्वर की ओर से पहली चेतावनी पुराने समय के फिरौन ने हट के बीज बोए और उसने हट की फसल काटी। ईश्वर ने उसे अविश्वास करने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने जो अविश्वास का बीज बोया उसने अपनी तरह की फसल पैदा की। इस प्रकार उसका प्रतिरोध तब तक जारी रहा जब तक उसने अपनी उजड़ी हुई जमीन, अपने जेठ पुत्र और अपने घर के सभी और अपने राज्य के सभी परिवारों के जेठ पुत्र की ठंडी मृत अवस्था को नहीं देखा। जब तक कि समुद्र का पानी उसके घोड़ों और उसके रथों और उसके युद्ध के सैनिकों के ऊपर नहीं आ गया। उसका इतिहास इन शब्दों में सच्चाई का एक भयानक उदाहरण है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बाइबल कहती है गलातियों 6:7 में, यदि मनुष्य यह समझते तो वे सावधान रहते कि वे क्या बीज बोते हैं। जैसे बोया गया बीज फसल पैदा करता है और बदले में यह बोया जाता है, फसल कई गुना बढ़ जाती है। दूसरों के साथ हमारे संबंध में यह नियम सत्य है। हर कार्य, हर शब्द एक बीज है जो फल देगा। विचारशील, दयालुता, आज्ञाकारिता या आत्मत्याग का हर कार्य दूसरों में और उनके माध्यम से और भी दूसरों में खुद को पुनः पेश करेगा। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष या मतभेद का हर कार्य भी एक बीज है जो कड़वाहट की जड़ से होती है और वह उगेगा, जिसे बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे और बहुत से कितने अधिक लोगों को जहर देंगे। इस प्रकार अच्छाई और बुराई का बोना समय और अनंत काल तक चलता रहता है। इसलिए हमें अच्छाई को बोना है, हमें बुराई को नहीं बोना है। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही मामलों में उदारता बीज बोने के पाठ में सिखाई जाती है। प्रभु कहते हैं, धन्य है तुम जो सब जल के पास बोते हो, यशाया 32:20। मैं यह कहता हूँ, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 2 कुरिन्थियों 9:6। सब जल के पास बोने का अर्थ है ईश्वर के उपहारों को निरंतर प्रदान करना। इसका अर्थ है जहाँ भी ईश्वर का उद्देश्य हो या मानवता की जरूरतें हो वहाँ देना है, हमारी सहायता की मांग करता है। इससे गरीबी नहीं बढ़ेगी। जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। बोने वाला अपने बीज को फेंक कर उसे बढ़ाता है। ऐसा ही उन लोगों के साथ भी है जो ईश्वर के उपहारों को वितरित करने में वफादार हैं। देने से वे अपने आशीर्वाद को बढ़ाते हैं। ईश्वर ने उन्हें पर्याप्तता का वादा किया है ताकि वे देना जारी रख सकें। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, कहता है लूका 6:38। और इससे भी बढ़कर बोने और काटने में शामिल है। जब हम परमेश्वर के सांसारिक आशीर्वाद वितरित करते हैं तो हमारे प्रेम और सहानुभूति का प्रमाण प्राप्तकर्ता में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद जागृत करता है। हृदय की मिट्टी आध्यात्मिक सत्य के बीज प्राप्त करने के लिए तैयार है, और जो बोने वाले को बीज प्रदान करता है वह बीज को अंकुरित करेगा और अनंत जीवन के लिए फल देगा। अनाज को मिट्टी में डालने के द्वारा मसीह हमारे उद्धार के लिए स्वयं के बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर ना मर जाए वह कहता है वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाए तो बहुत फल लाता है, यूहन्ना 12:24। इसलिए मसीह की मृत्यु परमेश्वर के राज्य के लिए फल का परिणाम होगा। वनस्पति जगत के नियम के अनुसार जीवन उसकी मृत्यु का परिणाम होगा, और जो लोग मसीह के साथ मिलकर काम करके फल लाना चाहते हैं उन्हें पहले जमीन में गिरकर मरना होगा। जीवन को दुनिया की जरूरतों के सांचे में डालना होगा। स्वार्थ नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आत्म बलिदान का नियम आत्म संरक्षण का नियम है। जमीन में गाड़ा गया बीज फल पैदा करता है और बदले में इसे बोया जाता है। इस प्रकार फसल कई गुना बढ़ जाती है। किसान अपने अनाज को फेंक कर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए मानव जीवन में देना ही जीना है। जो जीवन सुरक्षित रखा जाएगा वह जीवन है जो ईश्वर और मनुष्य की सेवा में मुफ्त में दिया जाता है। जो लोग मसीह के लिए इस दुनिया में अपना जीवन बलिदान करते हैं वे इसे अनंत जीवन तक सुरक्षित रखेंगे। बीज मरकर नया जीवन प्राप्त करता है, और इसमें हमें पुनरुत्थान का पाठ पढ़ाया जाता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे ऊपर के अदन में फिर से जीवित होंगे। कब्र में सड़ने के लिए रखे गए मानव शरीर के बारे में परमेश्वर ने कहा है, यह नाश में बोया जाता है या अविनाशी में जी उठता है, या अपमान में बोया जाता है या महिमा में जी उठता है, या निर्बलता में बोया जाता है या शक्ति में जी उठेगा। प्रकृति के या 1 कुरिन्थियों 15:42-43 में हम पाते हैं और पढ़ते हैं, प्रकृति के जीवित दृष्टांत बोने वाले और बीज द्वारा सिखाए गए अनेक पाठों में से ये कुछ ही हैं। जब माता पिता और शिक्षक ये पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो काम को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। बच्चों को खुद मिट्टी तैयार करने और बीज बोने दें। जब वे काम करते हैं तो माता पिता या शिक्षक हृदय के बगीचे को वहां बोए गए अच्छे या बुरे बीज के साथ समझा सकते हैं। और यह कि जैसे बगीचे को प्राकृतिक बीज के लिए तैयार किया जाना चाहिए, वैसे ही हृदय को सत्य के बीज के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जैसे ही बीज को जमीन में डाला जाता है, वे मसीह की मृत्यु का पाठ पढ़ा सकते हैं। और जैसे ही ब्लेड पत्ता उगता है, अंकुर होता है, वे पुनरुत्थान की सच्चाई का पाठ पढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं, प्राकृतिक और आध्यात्मिक बोने के बीच पत्राचार जारी रखा जा सकता है। युवाओं को भी इसी तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें मिट्टी जोतना सिखाया जाना चाहिए। अच्छा होगा कि हर स्कूल के साथ खेती के लिए जमीन हो। ऐसी जमीनों को ईश्वर का अपना स्कूल माना जाना चाहिए। प्रकृति में चीजों को एक तरह से देखा जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक जिसे उसके बच्चों को पढ़ना है और जिससे वे आत्मा के संस्कार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी की जुताई भूमि को अनुशासित करने और वश में करने में लगातार सबक सीखे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कच्ची भूमि पर बसने के बारे में नहीं सोचेगा या उम्मीद करते हुए कि यह तुरंत फसल पैदा करेगी। बीज बोने से पहले मिट्टी की तैयारी में ईमानदारी, परिश्रम और लगातार मेहनत की जानी चाहिए। यही बात मानव हृदय में आध्यात्मिक कार्य में भी लागू होती है। जो लोग मिट्टी की जुताई से लाभान्वित होंगे, उन्हें अपने हृदय में परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तब वे पाएंगे कि पवित्र आत्मा के नरम वश में करने वाले प्रभाव से हृदय की बंजर भूमि टूट गई है। जब तक मिट्टी पर कड़ी मेहनत नहीं की जाती, तब तक यह फसल पैदा नहीं करेगी। हृदय की मिट्टी के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर की आत्मा को इसे परिष्कृत और अनुशासित करने के लिए काम करना चाहिए, इससे पहले कि यह परमेश्वर की महिमा के लिए फल दे सके। मिट्टी आवेग में काम करने पर अपनी समृद्धि नहीं पैदा कर सकती। इसे प्रतिदिन सोच समझकर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे बार बार और गहराई से जोतना चाहिए ताकि खरपतवारों को दूर रखा जा सके, जो बोए गए अच्छे बीजों से पोषण लेते हैं। इस प्रकार जो लोग जोतते और बोते हैं, वे फसल की तैयारी करते हैं। किसी को भी अपनी आशाओं से दुखद विनाश के बीच खेत में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद उन लोगों पर रहेगा जो इस तरह से भूमि पर काम करते हैं, प्रकृति से आध्यात्मिक सबक सीखते हैं। मिट्टी की खेती करते समय मजदूर को यह नहीं पता होता कि उसके सामने क्या खजाना खुलेंगे, जबकि उसे उन लोगों से मिलने वाली शिक्षा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए जो अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। और बुद्धिमान लोग जो जानकारी दे सकते हैं, उससे उसे अपने लिए सबक इकट्ठा करना चाहिए। यह उसके परीक्षण का एक हिस्सा है। मिट्टी की खेती आत्मा के लिए एक शिक्षा साबित होती है। वह जो बीज को अंकुरित करता है, जो दिन रात उसकी देखभाल करता है, जो उसे विकसित होने की शक्ति देता है, वह हमारे अस्तित्व का निर्माता है। स्वर्ग का राजा है, हमारा परमेश्वर है, और वह अपने बच्चों के लिए और भी अधिक देखभाल और रुचि रखता है। जबकि मानव बोने वाला हमारे संसारिक जीवन को बनाए रखने के लिए बीज बो रहा है, दिव्य बोने वाला आत्मा में बीज बोता है जो अनंत जीवन के लिए फल लाएगा। तो आइए हम नम्र होकर के परमेश्वर के पास आए, अपने हृदय को उसके सामने खोल दे कि वह अपना आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक बीज बोए कि हम आत्मिक फल लाएं और उसके राज्य के लिए हम तैयार हो जाएं। परमेश्वर हमें मदद करे कि हम आत्मिक फल ला करके उसके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर आप सबों को और हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आई हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। तू हमें प्रकृति में बोने और काटने के द्वारा, बीज बोने के द्वारा बहुत कुछ सिखाना चाहता है। तू हमारे हृदय में आत्मिक बीज बोता है और यदि हम उसे अंकुरित होने दे तो हम स्वर्ग के लायक फल लाएंगे। इसीलिए पिता हमें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कर कि हम आत्मिक फल ला सके, तेरे रास्ता में चल सके। मेरे हरेक श्रोताओं को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन अग्रह की। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।